ओम नम सत्य सब मिलकर वाणी का चांद करेंगे।
ऐसी जोगति नित करो विचार, ऐसी जोगति नित करो विचार,
ऐसी जोगति नित करो विचार, ऐसी जोगति
मुकत कराम को हृदय धार, मुकत कराम को हृदय धार,
मुकत कराम को हृदय धार, मुकत कराम को हृदय धार।
कामना योक्त कर्म जो होई, कामना योक्त कर्म जो होई,
कामना योक्त कर्म जो होई, कामना योक्त कर्म जो
बंधन रूप पछानो सोही, बंधन रूप पछानो सोही,
बंधन रूप पछानो सोही, बंधन रूप पछानो
इसके अर्थ में नित बंधाया, इसके अर्थ में नित बंधाया,
इसके अर्थ में नित बंधाया, इसके अर्थ में नित बंधाया।
ग्रहण त्याग में नित कर साया, ग्रहण त्याग में नित कर साया,
ग्रहण त्याग में नित कर साया, ग्रहण त्याग में नित कर साया।
छिन रोवे छिन में हर खाए, छिन रोवे छिन में हर खाए,
छिन रोवे छिन में हर खाए, छिन रोवे छिन में हर खाए।
सकाम करम का ये फल पाए, सकाम करम का ये फल पाए,
सकाम करम का ये फल पाए, सकाम करम का ये फल पाए।
निर्बंध मार्ग का सुनो विचार, निर्बंध मार्ग का सुनो विचार,
निर्बंध मार्ग का सुनो विचार, निर्बंध मार्ग का सुनो विचार।
निष्काम कर्म हृदय में धार, निष्काम काम करम हृदय में धार ऐसी जुगती नित करो विचार मुकत कर्म को हृदय ये वाणी प्रभु वाणी है जिस प्रभु के आधार पर मेरा जीवन चल रहा है जिस प्रभु के आधार पर ये प्रकृति चल रही है वो प्रभु हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं कि मनुष्य जन्म लेकर उस युक्ति का उस मेथड का उस तरकीब का विचार कर जिस को धारण करके मनुष्य संसार के बंधन से या यूं कहिए कि सुख दुख के बंधन से या यूं कहिए कि बेचैनी के बंधन से मुक्त होगा और वो बेचैनी एक दो दिन के लिए नहीं छूटती परमानेंट छूटती है। जैसे कि महाराज जी का जीवन है तो महाराज जी के सामने बड़ी तकलीफें आई जैसे आम व्यक्ति के आगे आती हैं हम उनके आगे भी आई उनका देश छूट गया पार्टीशन हो गया घर छूट गया सत्संग छूट गया संगत छूट गई तो इतना लंबा समय जहां उनका जन्म हुआ वहां उनका बीता लेकिन एक दिन सब छूट गया और वो भी उसी प्रकार भटकते हुए जिस प्रकार अन्य प्रेमी आए वो भी भारत आ गए। प्रेमी बेचैन है निराश है महाराज जी शांत देखने में तो दोनों ही मनुष्य लेकिन प्रेमियों ने अपने जीवन में सकाम कर्म किए थे कामना पूर्ति के लिए कर्म किए थे महाराज जी ने जो जीवन व्यतीत किया जो कर्म किए वो वासना निवृत्ति के लिए जीवन जिया वासना निवृत्ति के लिए कर्म किए। तो देखने में शरीर वैसा ही है शिष्यों का भी और गुरु का भी लेकिन मानसिक हालत में कितना बड़ा अंतर है फिर भी सारे घबरा रहे हैं बर्बाद हो गए हैं महाराज जी के अंदर लेश मात्र भी उसका कोई असर ही नहीं यदि असर होता तो जहां बैठे हैं वहीं समाधि लग जा रही है। संसार में यदि मुझको सुख की आशा है और बुद्धि का निश्चय यह है कि संसार में सुख मिल सकता है यदि मैं प्रयास करूं कोशिश करूं तो महाराज जी की बुद्धि का निर्णय यह है कि संसार में सुख है तो सही लेकिन सुख के साथ दुख है चाहिए सुख सुख के साथ दुख साथ में मिल रहा है आपको तो आप बेचैन हो गए या चैन हो गए इसीलिए ये द्वंद रूप जगत है इसी को माया कहते हैं। हर मनुष्य सुख प्राप्ति के लिए कोशिश करता है जो भी जन्म लेता है जैसे जैसे उसकी बुद्धि का विकास होता है उसी अनुसार वो लंबी प्लानिंग करता है बड़े सुख की प्लानिंग करता है जो जो भी सामर्थ्य है उसकी उसका पूरा इस्तेमाल करता है क्योंकि सब कुछ उनकी बुद्धि होश में है वो इसके विज्ञान को जानते हैं कि संसार द्वंद रूप है सुख के बाद दुख दुख के बाद सुख आता जाता रहता है यहां कभी भी मनुष्य को चैन मिल ही नहीं सकता जब से धरती बनी जब से धरती पर मनुष्य आया उसका विज्ञान यह है कि मनुष्य को धरती पर चैन कभी मिल ही नहीं सकता यदि उसने अंतर्यामी ईश्वर की खोज नहीं की तो इसीलिए गुरु धारण करना पड़ता है कि गुरु के का जो निश्चय है उनका भी शरीर हमारे जैसा ही है लेकिन उनका मन कहां लगा हुआ है उनकी बुद्धि कहां लगी हुई है ये गुरु के जीवन से पता लगता गुरु के मार्गदर्शन से पता लगता गुरु स्वार्थी नहीं है उसने कोई कामना नहीं निर्वास है फिर भी हमारी बुद्धि ये निर्णय नहीं कर पाती। जो निर्वास गुरु है वो हमारे कल्याण के लिए हमारा मार्गदर्शन क्यों कर रहा है? क्योंकि वो बंधन मुक्त है, आपके मार्गदर्शन का भी उसको बंधन नहीं है। यही कारण है कि जब प्रेमी माँ जी घिर के बैठ जाते थे चारों तरफ, माँ जी फिर भी समाधि में, बड़ी मुश्किल से समाधि जब टूटी, टूटती भी थी, बाहर का होश आता था तो माँ जी कहते थे प्रेमी कोई विचार करो, और प्रेमी जब विचार नहीं करते थे अर्थात प्रश्न नहीं पूछते थे फिर माँ जी समाधि में चले जाते। आप तो ये सोचेंगे कि माँ जी पता नहीं कैसे हम बैठे हैं फिर समाधि में चले जाते, लेकिन किसी के मन में ये बात नहीं आती थी कि हमारी फिक्र महाजय नहीं कर रहे हैं अपनी समाधि में चले जा रहे हैं। वो उनकी स्वाभाविक स्थिति है, जैसे कि आप श्रवण करने में बैठते हो, आप के अंदर इच्छा है ना कि मेरा मन लग जाए श्रवण में, इच्छा करने के बाद भी प्रयास करने के बाद भी आप देखते हैं कि स्वाभाविक रूप में आपका मन संसार में चले जाता है। कहां मन में छूट गया आपको पता ही, तो जिस प्रकार आपका मन स्वाभाविक रूप में संसार में चला जाता है उसी प्रकार सत्पुरुष का मन यही कही बुद्धि स्वाभाविक रूप में उनकी जो सूरत है उनकी जो वृत्ति है वो ईश्वर के साथ एक है। जहां शांति का सागर है दुख नाम की क्लेश नाम का वहां एक फ्लैश भी नहीं। अब बताइए कि शरीर के टिका को पता लग जाए ना कि गुरु का भी वैसा ही शरीर है जैसे कि मेरा, क्योंकि अंदर की स्थिति में कितना बड़ा अंतर है कि मैं ईश्वर की याद करने बैठा हूं समय निकाल कर बड़ी मुश्किल से और पूरा प्रयास भी कर रहा हूं फिर भी मेरा मन संसार में जा रहा है, और गुरु का भी बिना प्रयास के उसी प्रकार उनका जो मन है यही कही उनकी जो वृत्ति है वो अंतर्यामी ईश्वर के साथ एक हो जा रही लीन हो जा रही है। तो ये क्या स्थिति एकदम से आ सकती है? गुरु को ना मरने का भय, ना उनका देश छूट गया ना उसका अफसोस है, वो सब कुछ बदलने के बाद भी अंदर से शांत, अर्थात उनकी वृत्ति क्या है उसको कहते हैं निष्काम वृत्ति। वृत्ति में यही कही बुद्धि के अंदर कामना परमानेंट समाप्त हो चुकी, नहीं तो इतने शिष्य उन्होंने बनाए होंगे कितनी मुश्किल से, कैसा उनका मार्गदर्शन किया होगा, इस मुश्किल से वहां आश्रम तैयार हुआ गंगोठिया के अंदर सब छूट गया। ये तो चिंता फिक्र में उनकी समाधि लगनी ही नहीं चाहिए थी। तो इसीलिए गुरु का जो जीवन होता है वो हमारे हमारा मार्गदर्शन करता है। हाँ ये कहानी किस्सा नहीं है, ये ईश्वर का ये जीवन की रियलिटी है, और ईश्वर भी कोई दूर नहीं है, इस देह के अंदर उसी प्रकार मौजूद है जिस प्रकार मेरा मन इस देह के अंदर मौजूद है। मेरा मन जो मेरी देह में मौजूद है मेरा ही है वो, लेकिन मुझे कितना बेचैन करता है, एक दिन भी मैं चैन से नहीं जी सकता, बिना चिंता फिक्र के नहीं जी सकता, बिना संसार में इच्छा पूरी करके मैं नहीं जी सकता। मेरी ये स्थिति है और गुरु की वो स्थिति हो गई इसी मनुष्य जन्म में कि वहां संकल्प ही मन में कोई कामना का नहीं होता, इसलिए मनुष्य जन्म उस शांति की प्राप्ति के लिए मिला था जो मेरी देह के अंदर मौजूद है, जिसका संसार से दूर दूर तक कुछ संबंध नहीं है। तो बताइए मुझे, मेरी देह के अंदर ऐसी चीज मौजूद है जो शांति का सागर है, आनंद का सागर है, यहां द्वंद है ही नहीं, सुख के बाद दुख के बाद सुख है ही नहीं, वहां केवल आनंद है, केवल शांति है, केवल चैन। तो मनुष्य जन्म इस वास्ते मिला था कि तो अंतर्यामी उस ईश्वर की खोज कर जो आनंद रूप है, शांति रूप है और तेरी मंजिल है, परमानेंट मंजिल है। और मैं कैसे वक्त पर बात करता हूँ दुनिया की निकल कर करके, किसी की देख लिया ये आगे बढ़ गया, अच्छा मैं भी कोशिश करता मैं भी आगे बढ़ जाऊँ, उसको ये पता ही नहीं है, बुद्धि का निर्णय हुआ ही नहीं कि जितना आगे बढ़ेगा तो जीवन में उतना ही पीछे चला जाएगा, अर्थात तेरी बेचैनी बढ़ जाएगी। तो कमाई ज्यादा बढ़ रहा है, कर्म ज्यादा बढ़ रहा है, कामना ज्यादा बढ़ रहा है, छोटी कामना थी पहले बड़ी कामना कर, तो तू अपनी ही मुसीबत का अज्ञानता के कारण विकास कर और सोच रहा है मैं विकसित हो गया। इसीलिए भगवान आपको याद दिला दिए कि ऐसी युक्ति नित करो विचार, मुक्त कर्म को हृदय। कर्म कौन सा करना था? मुक्ति का। मुक्ति किससे? सुख और दुख से। आप कहोगे सुख से कौन मुक्ति जाता है? प्रकृति का सिद्धांत है कि सुख से ही दुख उत्पन्न होगा, हर सुख दुख में बदल जाता है। जितना बड़ा सुख भोगने की कामना करोगे उतना बड़ा दुख आपको भोगना ही पड़ेगा, ये प्रकृति का सिद्धांत है। एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये विज्ञान का सिद्धांत है। ये आया कहां से सिद्धांत? ये प्रकृति का ही सिद्धांत है। इसीलिए जो गुरु की डायरेक्शन थी संसार में जीवन जीने की, वो कहते हैं जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो, जितना सरल जीवन कर सकते हो, जितने कम में काम चला सकते हो, उतने ही तुम ज्यादा बुद्धिमान। लेकिन होता क्या है, हम सोचते हैं मेरे पास तो बुद्धि बहुत है तो मैं इस मार्ग को क्यों अपनाऊं। जो बुद्धू लोग हैं वो अपना सरल जीवन के पास सोचते हैं, जो पैसा ही नहीं है तो सादगी में गुजारा। तो इस विज्ञान को यदि मैंने विज्ञान की तरह से नहीं सीखा, तब सत्संग करके भी, कुछ श्रवण करके भी मेरी बुद्धि का निर्णय नहीं बदलता, वो वैसे का वैसे ही करा रहता। ये काम मैं करता तो हूं अच्छे लगते हैं, क्योंकि बुरी संगत किसी को अच्छी नहीं लगती है। इसीलिए मैं एक प्रोग्राम को अटेंड कर लेता हूं, लेकिन मेरी बुद्धि का निर्णय नहीं बदलता। कि मनुष्य जन्म निष्काम होने के लिए मिला था, कामना का विकास करने के लिए नहीं मिला। संसार में बड़ा आदमी बनने का एक ही मतलब होता है कि कामना का विकास करें। जो मेरी जिंदगी की बर्बादी है, जो मेरी जिंदगी का फेलियर है, उसको मैं लक्ष्य बनाकर चल रहा हूं। नहीं तो वाणी ये क्यों कहेगी कि कामना रूपी अगन में जीव जले दिन रात। ये ईश्वर आपको भगाएगा क्या? तो ईश्वर ही वाणी, किसी की लिखी हुई तो वाणी है। कामना रूपी अगन में जीव जले दिन रात, मंगत मार्ग धर्म में जीव शुक्र हो गया। तो ईश्वर का मार्ग है, और वो बाहर का मार्ग नहीं, अंदर का मार्ग। मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो गया। मैं जीव हूं जो मानसिक बेचैनी से त्रस्त, मैं वो जीव हूं, वो जाने वाला हूं। तो बताइए, अपने आप को मैंने शरीर समझ लिया, मुसीबत मैंने कहां समझ ली? संसार में। अरे मुसीबत संसार में नहीं है, मुसीबत तेरे मन के अंदर है। और इस मुसीबत से मुक्त होने का रास्ता भी शरीर के अंदर ही है, बाहर नहीं है। तो बाहर मैंने कौन सा जीवन जीना था? निष्काम होने। कर्म तो फिर भी मुझको करना पड़ेंगे, क्योंकि प्रारब्ध शरीर का होता है, वैसा वैसी स्थिति से आप गुजरोगे। कि कामना रखो ना रखो, इसमें आप स्वतंत्र हो, इसमें आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो। आपके पास पैसा बहुत है, जो मन चाहे चीजें बाजार से खरीद के ला सकते हो, जो मन चाहे चीजें आप खा सकते हो। लेकिन यदि बुद्धि है आपकी, सतोगुणी बुद्धि है या सतबुद्धि है, तब आप विचार करोगे कि किस तरह का जीवन जीने से मेरी कामना बढ़ जाएगी, कामना मल्टीप्लाई होगी, और किस प्रकार का जीवन से मेरी कामना धीरे धीरे जैसे जैसे आयु बढ़ेगी कमजोर पड़ती चली जाएगी। यदि आपकी कामना कमजोर नहीं पड़ रही है, अभी विकास की गति ही आपकी बनी हुई है, तो इसका मतलब आप हर कर्म जो संसार में कर रहे हो तो कामना को बढ़ाने वाला। इसीलिए याद रखिए कि आपकी बेचैनी हर वर्ष बढ़ेगी। बेचैनी के संस्कार, कामना के संस्कार आपके मन के अंदर बढ़ते रहेंगे। बीच में यदि मृत्यु आ गई तो इससे भी बुरा आपका अगला जन्म हो सकता है, मनुष्य जन्म ही छिन जाए। ये विज्ञान कोई साधारण विज्ञान नहीं है। यदि मैंने इसको विज्ञान की तरह से ही नहीं सीखा, तब तो फिर मैं वही करूंगा जो करता हूं, सारी जिंदगी कंप्लेन करूंगा, सेवन करके भी क्या करूं, सेवन तो करता हूं लेकिन मन मेरा कहीं भाग जाता है। मन में जहां के संस्कार बनाए हैं तुम्हें, जो लक्ष्य बनाया है, मन वही तो जाएगा। तुमने हमेशा मन को बाहर ही लगाने की कोशिश की, वही जाएगा। इसीलिए बाहर का जीवन अनिश्चित है, कुछ भी तेरे हाथ में नहीं है। सारी सुरक्षा का इंतजाम करके तो घर से निकलता है, बाहर तुझे कौन मार डालेगा, कहां तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तुझे कुछ पता नहीं। बाहर का जीवन अनिश्चित और अंदर का जीवन निश्चित है। ईश्वर है वो तुझको कभी नहीं छोड़ेगा, इस देह की मृत्यु हो जाएगी तब भी तुझको नहीं छोड़ेगा, और वो तेरा जीवन है, तेरी जान है, तेरी चेतना है, तेरी कॉन्शियसनेस है, इसके बिना तो तू मन की गति भी नहीं जान सकता। वो प्रभु गुरु कह रहा है कि अंदर है, और उसका जीवन जो हम आंखों से देख रहे हैं वो बता रहा है कि हाँ इतना आनंद है कि जी समाधि लगी। मैं फिर भी क्योंकि सही चिंतन नहीं करता, सही मनन नहीं करता, सही विचार नहीं करता, इसीलिए मेरी बुद्धि का निर्णय वैसे का वैसे ही बना रहता है, चाहे मैं सत्संग शुरू चाहे ना सुनू, वो निर्णय मेरी बुद्धि का नहीं बदलता, बदलेगा भी कैसे। ये विज्ञान है, ये साइंस परफेक्ट साइंस है, इसको विज्ञान की तरह से ही सीखा जाता है। जिसने संसार के बंधन से, संसार के दुखों से मुक्ति पानी है, उसको ये विज्ञान सीखना ही पड़ता है। तो कर्म के लिए क्या दर्शन दे रही है, ऐसी युक्ति नित करो विचार, मुकत कर्म को हृदय, मुक्ति रूपी कर्म का वो तुम्हें अपने जीवन में धारण करना। मुक्ति किससे, सुख दुख से। यदि सुख के लिए कर्म कर रहे हो तो दुख तो भोगोगे ही भोगोगे, क्योंकि ये दोनों जैसे एक कॉइन और सिक्का होता है ना, हेड और टेल दोनों संगी रहते हैं, दिन और रात दोनों संगी रहते हैं, बनना बिगड़ना दोनों संगी रहते हैं, सफलता विफलता दोनों संगी रहते हैं। दुनिया की हर चीज द्वंद्व रूप है, इस द्वंद में तो शांति चाहता है, चैन चाहता है, तेरी बुद्धि सांसारिक है, इसीलिए तेरी बुद्धि का निर्णय यही बना रहता है, तो स्मरण करता है तब भी यही बना रहता है। इसलिए मैंने इस विज्ञान को सीखना ही होता है, इसलिए जिसकी तेज बुद्धि है, शार्प बुद्धि है, उसको ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि मैं इस साइंस इस विज्ञान को सीख सकता हूं। ये वाणी के अंदर, सत्ता विलास के अंदर, गीता के अंदर सारा विज्ञान द्वारा हो गया, इसीलिए आप लोगों को कैंप भी कराया जाता है, इसी आश्रम में कैंप कराया जाता है, उस विज्ञान को किसी प्रकार सीख लो। हर व्यक्ति नहीं सीख सकता, उतनी बुद्धि नहीं होती, लेकिन संगत का यही तो रोल है, दूसरे के संग से, दूसरे की सहायता से मैं सीख सकता हूं, लेकिन वो भावना तो सीखने की मेरे अंदर होनी चाहिए। जिस स्टूडेंट के अंदर भावना ही नहीं आगे बढ़ने की, तो क्या सीखेगा वो। जिसके अंदर भी ये भावना है कि मैंने अंतर्यामी ईश्वर की तरफ आगे बढ़ना है, इसी में मेरे ये वर्तमान जो मानव जन्म है इसकी सफलता है, संसार में मैंने काम चलाना है, जीवन जिस काम के लिए मनुष्य जीवन दिया ईश्वर ने, मैंने वो कार्य करना ही करना है। जिसके अंदर ये निश्चय होता है वो फिर कोशिश भी करता है। मन आय करिए कामना युक्त कर्म जो हो बंधन रूप पछानो से। हमारे सारे सोके उठने से लेकर रात्रि के द्वारा सोने तक जितने काम होते हैं, उनका एक बार दिन में सोच के तो देखे, सारे कर्म मेरे वासना युक्त थे या नहीं। बच्चे का पालन किया वो भी मेरा बच्चा है, घर की सफाई की वो भी मेरा घर है, शरीर को ठीक ठाक किया वो भी मेरा शरीर है, तो मेरा के लिए किया, मैं के लिए किया नहीं, मैं जो भी कर्म किया वो मेरा के लिए, जो मेरा है वो तो मेरे देह से बाहर है तो बंधन है, और जो मुक्ति का रास्ता है वो मैं के अंदर है। अर्थात मैं कौन, जीव, जीव की जीव अंदर है ना देह के, तो मुक्ति का रास्ता भी देह के अंदर ही है, जिसको हम ईश्वर कह रहे हैं, जिसको हम आत्मा। तो मैं कामना युक्त कर्म करता हूं, और वाणी कह रही है कामना युक्त कर्म जो होई बंधन रूप पछानो सोई। ये तेरे संसार में तेरा बंधन बढ़ा देगा। अब बताइए जिसका बंधन बढ़ जाएगा वो तो चैन का जीवन जिएगा या बेचैनी का जीवन जिएगा। यहां से बुद्धि का बड़ा स्पष्ट निर्णय हो जाता है कि मैं जितना भी संसार फैलाता हूं मैं अपने बंधन को फैलाता हूं, और इसीलिए वो मेरा पतन है। चाहे लोगों की दृष्टि में मैं बड़ा विकसित इंसान हूं, लेकिन वास्तव में मेरी मेरे अंदर यदि सतबुद्धि है, सत विचार तो मेरी बुद्धि समझती है, तो वो मेरा बंधन है, मेरा पतन है। आगे कहते हैं जिसके अर्थ में नित बंधाया ग्रहण त्याग में नित दर्शन। जिसके अर्थ माना जिस कर्म का जो फल होता है उसका वो अर्थ है, तो मैं निरंतर उसके फल में बनता चला जाता हूं जो कर्म में संसार में करता हूं। और ये ये मुझे मिलना चाहिए ये नहीं मिलना चाहिए, इससे मैं मुक्त हो जाऊं, ये मुझे खुशी मिल जाए, इस प्रकार ग्रहण त्याग में ये नित्य मेरी मन बुद्धि हंसी रहती। आगे कहते हैं, छिन रोवे छिन में हर खाए, सकाम कर्म का ये फल पाए। ये जो सांसारिक कर्म है सुख प्राप्ति के लिए, इसका फल क्या है? छिन में रोवे छिन में हर खाए, क्षण मात्र में खुश हो जाता है, क्षण मात्र में दुखी हो जाता है। ये बिल्कुल टेम्परेरी है, संसार में आप कुछ भी क्यों ना कर लीजिए, आप हमेशा बेचैन ही रहोगे। इस बेचैनी से आपकी जिंदगी में एक महीना भी नहीं से बेचैनी से रहित जो है, एक महीना भी आपके जीवन का नहीं है। सब कुछ का साला निर्णय है, जब मेरी बुद्धि मनन करती है तो इस बात को स्वीकार कर लेती है। सब कुछ सदगुरु बात तो ठीक कर रहा है, तब आप दृढ़ इच्छा लेकर अंतर्यामी प्रभु के मार्ग पर चलने की कोशिश करें। आगे कह रहे हैं कि निर्बंध मार्ग का सुनो विचार, निष्काम कर्म हृदय में लो। कहते हैं निर्बंध मार्ग का सुनो विचार, ये है जब तेरे बुद्धि के अंदर इच्छा जागृत होती है कि मैंने इस संसार के बंधन से मुक्त होना है, तब आप जो है सत विचार को ध्यान से सुनते हो, ध्यान से पढ़ते हो और एक जिज्ञासा लेकर, जैसे जिज्ञासु के अंदर होती है, उसके अर्थ को, उसके भाव को, उसके राज को समझने की गहराई से कोशिश करते हो, तब कहते हैं कि निष्काम कर्म हृदय में लो। जब आपकी बुद्धि का निर्णय हो जाता है अनुशासन के अनुसार, तो फिर आपको इतनी परेशानी नहीं होती जितनी आज परेशानी होती है। सिमरन करने के लिए वक्त भी निकाल लेता हूँ, सिमरन करने बैठता भी हूँ, फिर भी याद संसार ही आता है, संसार में मन लग जाता है, और जो अंतर्यामी ईश्वर है मंत्र रूप में जो ईश्वर मुझको प्राप्त है उसे मन ही नहीं करता। तो अब बताइए कि मन के अंदर किस प्रकार के संस्कार मेरे अंदर इकट्ठे हैं, तो जैसे संस्कार है मन उधर ही जाएगा। इसीलिए सतोगुणी संस्कार करने में वक्त लगता है, क्योंकि ये तमोगुणी रजोगुणी संस्कार जो सांसारिक संस्कार है, ये इकट्ठे मैंने कई जन्मों में किए, तो फटाफट तो काम हो नहीं सकता। लेकिन विचार की बात यह है कि जितनी भी कोशिश कर लूंगा, जितनी जल्दी कोशिश कर लूंगा, उतने मेरे सतोगुणी संस्कार तो बनने लगेंगे, और जैसे जैसे सतोगुणी संस्कार बनेंगे और बाहर के बारे में मेरी बुद्धि में यह निश्चय हो जाएगा, यहां मैंने काम चलाना है, रेस नहीं लगानी है निकल कर, तो बाहर के संस्कार आपके जो है धीरे धीरे कमजोर पड़ते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड होता है कि जो हमारे रजोगुणी तमोगुणी संस्कार है ये धीरे धीरे वीक हो जाते हैं, इरेज होने लगते हैं, और जो सतोगुणी संस्कार है, ईश्वर प्रेम के, ईश्वर भक्ति के संस्कार है, धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। इस तरह से मेरी बुद्धि धीरे धीरे निष्काम होने लगती है, ईश्वर हुक्म में जीने की इसकी आदत बन जाती है, प्रभु ने जो देना है देगा, मैं क्यों काम ना करूं। इस प्रकार से मनुष्य जन्म निष्काम होने के लिए मिला है, कामना बढ़ाने के लिए, कामना का विकास करने के लिए नहीं मिला। इसलिए मैं यदि बुद्धिमान हूं तो संसार की नकल ना करो, गुरु जो कह रहा है, वाणी जो कह रही है, उसको गहराई से समझने की कोशिश करो और संसार में आकर निष्काम बनने की कोशिश करो। इसलिए बड़े भाग्य से ये मौका मिलता है कि ऐसी संगत मिल जाए जहां निष्काम कर्म करने का मौका मिलता है। अभी जब ये महिलाओं का कैंप खत्म हुआ, तो पहले तो पहला दिन जब होता है तब सबके मन में ऐसा लगता है यहाँ तो बड़ा कष्ट है, बड़ी गर्मी है, ये है वो है, लेकिन जहां जब दो दिन बीत जाते हैं तब लगता है यहाँ आपने तो बड़ा अच्छा किया, और जिस दिन कैंप खत्म होता है उस दिन उनका जाने का मन नहीं करता, एक दूसरे से मिलकर रोते हैं, दुखी होते हैं। मैंने खुद देखा यहां पर परसों की बात है कि एक महिला रो रही थी, मैं उसके पास गया, मैंने कहा क्या बात है, बोली मैं ये सोच के आई थी मैं आश्रम में जा रही हूं, मैं सबकी सेवा करूंगी, और रो इसलिए नहीं थी कि यहां तो मुझे सेवा का मौका ही नहीं मिला, सारे लोग सेवा कर रहे, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी कि संसार में ऐसा भी कोई स्थान हो सकता है जहां लोग दूसरे की सेवा करने के लिए वो लालायित रहते। अब बताइए किसलिए रो रहा है? ये वास्तव में ईश्वर के लिए रो रहा है, मैं संसार के लिए रो रहा हूं। मनुष्य जन्म रहा था, मैंने अपना ऐसा मन तैयार करना था कि ईश्वर के लिए रोना पड़ेगा, इसीलिए ये वही रोता है ईश्वर के लिए। ये निष्काम होने की कोशिश करता है, इसलिए निष्काम कर्म करने का जब मौका मिलता है, निष्काम सेवा का मौका मिलता है, याद रखिए कि ईश्वर की कृपा है जो उसने ये मौका दिया। इसलिए निष्काम कर्म हमारा शौक होना चाहिए, निष्काम कर्म को धीरे धीरे करना चाहिए ताकि मानव जीवन में शांति प्राप्त हो सके। ओम नमः शिवाय।